कुछ देर मस्ती करने के बाद रश्मि भी चली गई और अंशिका अनुपमा जी के साथ मस्ती करते करते ही सो गई। आरवी भी अपना काम करके अपने रूम में गई तो अनुपमा जी उसको बेड पर सुला रही थी। आरवी ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, सो गई इतनी जल्दी? आवाज़ सुनकर अनुपमा जी ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत मस्ती की है उन्होंने, थक गई होंगी इसलिए खेलते खेलते ही सो गई। आरवी ने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। अनुपमा जी अंशिका के पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर में आरवी भी उनके पास आ गई और उसको थपकी देने लगी। अब अनुपमा जी ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा हमें आपसे कुछ कहना है। आरवी ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, कहिए माँ। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा चाहे कुछ हो जाए कभी इस बच्चे के लिए अपने प्यार को कम मत होने दीजिएगा। माँ बनना बहुत खुशकिस्मती की बात है और भगवान ने आपको एक ऐसे बच्चे की माँ कहलाने का सौभाग्य दिया है जो अब तक माँ के प्यार दुलार के लिए तरसती आ रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है, उन्हें माँ का प्यार दीजिएगा, इतना प्यार कीजिएगा कि उनके दिल से आपको खोने का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आपको माँ कहलाने का हक उन्होंने दिया है, अब माँ आपको खुद से बनना होगा उनकी। याद रखिएगा, आपका रिश्ता सिर्फ दामाद जी के साथ ही नहीं जुड़ा है बल्कि आप अब एक पत्नी से पहले एक माँ है और आपको इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना है, निस्वार्थ प्रेम करना है इस बच्ची से। मैं जानती हूँ माँ, और सच कहूँ तो जब से मैं अंशु से मिली हूँ मुझे एक बार के लिए भी लगा ही नहीं कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं उनकी पत्नी बनूँ या न बनूँ पर अंशिका की माँ हमेशा रहूँगी और उसे वो प्यार दूंगी जिसके लिए वो आज तक तरसती आई है। अनुपमा जी के लबों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बड़े प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, आप जितनी अच्छी बेटी हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी पत्नी और माँ बनेंगी। हमें गर्व है आप पर, भगवान ऐसी समझदार बेटी हर माँ बाप को दे। आरवी के लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बात करने के बाद अनुपमा जी वहाँ से चली गई। आरवी अंशिका के बगल में लेट गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कितना जुड़ाव था दोनों में, बस एक ही दिन में अंशिका आरवी की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ शानाज सारा दिन डायरेक्टर के साथ बिजी था, उनके न्यू शो की कास्टिंग फाइनल की जा रही है, उन्हीं में उनका सारा दिन निकल गया। शाम को शान अपने ऑफिस पहुंचा और कुछ देर काम करने के बाद जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ उसके कैबिन का दरवाजा खुला और रेहान ने अंदर कदम रखते हुए कहा, तू फ्री हो गया? हाँ, क्यों, नहीं होना चाहिए था? शान का टेढ़ा जवाब सुनकर रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, तू कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता ना, और तू बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछकर मेरा दिमाग ख़राब करना नहीं छोड़ सकता, है ना? शान ने भी उसी लहजे में भौंच खाकर सवाल किया। इस बार रेहान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, मैं यहाँ ये कहने आया था कि बहुत दिन हो गए कहीं बाहर साथ में नहीं गए, आज चलते हैं दोनों यार, कुछ वक्त बिताएंगे साथ में। नहीं, मुझे घर जाना है, अंशिका इंतज़ार कर रही होगी, शान ने सीधे ही इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर रेहान मन ही मन बोला, वही तो नहीं है घर पर तेरा इंतज़ार करने के लिए, तभी तो तुझे घर जाने से रोकना है, पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, पर करना तो पड़ेगा ही, उसने मन ही मन खुद को समझाया। शान उसको बड़े गौर से देख रहा था, उसने उसको घूरते हुए कहा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? शान ने एक बार फिर भौंच गई। उसकी आवाज़ सुनकर रेहान होश में लौटा और अचकचा कर बोला, नहीं मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस सोच रहा था कि अब इस दोस्त की तेरी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इतना वक्त हो गया हमें साथ में वक्त बिताए हुए, आज दिल कर रहा है कहीं अकेले बैठकर फिर से पुरानी यादें ताज़ा करें, तो तू बहाने बना रहा है, जैसे अगर एक दिन लेट घर जाएगा तो तेरे सोने के महल में आग लग जाएगी, जैसे रावण की लंका में लग गई थी। उसका तर्क सुनकर शान का शक और भी गहरा हो गया, उसने उसको तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे घर जाने से रोकने के लिए ये सब नाटक कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने इंटेलिजेंट दिमाग को थोड़ा कम चलाया कर, बेवजह सब पर शक करता रहता है, दुनिया में हर इंसान तुझे धोखा नहीं दे रहा। रेहान अब थोड़ा सीरियस लग रहा था। शान ने उसे देखा फिर आगे बढ़ते हुए बोला, इस दुनिया में हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने फायदे के लिए किसी न किसी को धोखा दे रहा है, इसीलिए ये लेक्चर मुझे मत सुना, जब तू कुछ छुपा ही नहीं रहा है तो मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो कैबिन से निकल गया तो रेहान ने अपना सिर पकड़ लिया, इतना अड़ियल क्यों है ये, कभी मेरी कोई बात नहीं सुनता, अब घर जाकर पता चलेगा कि अंशु भाभी के साथ गई है तो बेवजह सब पर चिल्लाएगा और भाभी पर नाराज़ होगा सो अलग। वो भी परेशान सा ऑफिस से निकल गया। शान घर पहुंचा तो हमेशा की तरफ पहले अपने कमरे में गया। आरवी को वहां न देखकर उसने सुकून की सांस ली, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और अंशु के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे को खाली देख वो नीचे सुभाष जी के कमरे में गया तो अंशिका वहाँ भी नहीं दिखी। अब उसने सारे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं मिली ही नहीं। ये देखकर उसका पारा चढ़ गया और वो गुस्से से चीखा, छ छाया। जी जी भैया, आपने मुझे बुलाया। उसकी आवाज सुनकर बेचारी छाया घबरा कर किचन से बाहर आई। शान को इतने गुस्से में देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए उसे देखा तो अथर्व ने सख्त आवाज में सवाल किया, अंशु कहाँ है?